हरे कृष्णा। तो हमारी कथा कहाँ तक आई थी? यस, क्या बता सकता है? राजा जब आतुर होकर पहुँचते हैं और वो जो शिल्पकार है, मूर्तिकार, वहाँ से अदृश्य हो गए रहते, और उस समय नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूरी हो चुकी है। तो ये कैसे पूरी हो चुकी है? तो इसका कहानी आपको बताता हूँ। तो जाती है हमारी कहानी फ्लैशबैक में। हाँ, वो कहानी ऐसी है कि जब भगवान द्वारका में थे तो वृंदावन से मथुरा गए थे, मथुरा से द्वारका गए थे। तो वृंदावन की जो लीलाएँ हैं वो इतनी मधुर है भगवान की कि भगवान कभी मथुरा को भूल नहीं पाए, मतलब वृंदावन को भूल नहीं पाए। कंस का वध किया, माता पिता के साथ रहे, गुरुकुल गए उज्जैन, वहाँ से जरासंध के साथ युद्ध किया, नगरी बसाई समुद्र किनारे द्वारका, लेकिन भगवान कभी भूल नहीं पाए वृंदावन को। हाँ, माता की, मक्खन की, गोपियों के प्रेम की, सखाओं के प्रेम की, हमेशा उनको याद आती थी। और इतनी अद्भुत लीलाएँ उन्होंने की है वृंदावन में कि उसी के ध्यान में मग्न रहते थे। यहाँ तक कि जब पत्नी कौन है उनकी, रुक्मिणी, जो भाग्य लक्ष्मी, उनकी भाग्य लक्ष्मी, वो अपने हाथ से भगवान के लिए 56 भोग बनाती थी और खुद बैठकर पंखा करते हुए भगवान को भोजन कराती थी। इतना श्रेष्ठ भोजन और कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन वो भोजन करते करते भगवान रो रहे हैं। रुक्मिणी जी पूछते कि हमारे सेवा में कुछ बाधा आई, जैसे त्रुटि रह गई, दोष रह गया, तो मुझे माफ़ कर देना, हमको बताना कि हम आपकी सेवा में कैसे और अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो वो कहते नहीं, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। ऐसे उन्होंने कहा है, ब्रजवासी बताते हैं कि जो यशोदा मैया कुछ सख्त खाने को अपने मुंह में डालकर चबा कर उसको नरम करके मुंह से निकाल कर अपने बेटे के मुंह में डालती थी, उसका स्वाद जो है वो भगवान उनको बता रहे हैं रुक्मिणी को कि ये 56 भोग में नहीं है, क्या करूँ। फिर रात में सोते हैं 16,108 रानियों के साथ में, अलग अलग रूप में। हाँ, उतने ही रूप में अलग अलग महल में रहते हैं। और बीच रात में उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, ललिता, विशाखा, राधा रानी, हे विश्वानु नंदिनी, आप कहाँ हो? आप सोच सकते हैं ना, किसी आप पत्नी के साथ में शयन कर रहे हैं, पत्नी भी जग जाती है, सब रानी जग जाती हैं। पूछती है, अरे हम आपके साथ में संग में हैं और आप ललिता, विशाखा और राधा रानी को याद कर। तो वो शुद्ध भक्त है भगवान के, सब रानियाँ, उनके मन में द्वेष नहीं उत्पन्न होता है कि ऐसे कौन वो स्त्री है जो मेरे से अधिक प्रेम करती है, मेरे पति से। वो सोच रही है कि ऐसा क्या प्रेम है जो हम आपको दे नहीं सकते हैं वो गोपियों के बीच में। भगवान कहते हैं कि हम आपको बताएंगे। तो एक बार भगवान को बहुत सरदर्द होता है, हेडेक। तो सभी भगवान को, द्वारकाधीश को अगर सरदर्द हो रहा है तो सब वैद्य आते हैं, राज वैद्य आते हैं, अपना इलाज करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर बाहर के वैद्य आते हैं, वो भी इलाज करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सब रानियां तैयार हैं, खड़ी हैं सब लोग, क्या करें, हमारे पति को दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि भी आते हैं, जाओ सब द्वारका नगरी में जाओ, सबसे उपाय करके आओ। तो कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि आपको ही पता होगा, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं सबके, आप ही जानते होंगे अपने सर में दर्द का इलाज क्या है। तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि अब तक आपने पूछा ही नहीं था, तो इसलिए हमने बताया नहीं आप। अभी सुन लो कि जो व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त समझता है, उसके चरणों की रज अगर मिल जाए और मेरे सर पर लगाई जाए तो मेरा सर दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये बात सुनते रानियाँ सब पीछे हट जाती, ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्राणनाथ स्वामी हैं, इनके चरणों की धूल हमारे मांग में भरते हैं हम, और अगर हम ऐसा कार्य करेंगे सब लोग नरक में जाएंगे, हम नहीं कर सकते। भगवान बड़ी आशा से अपनी पत्नियों की ओर देखते हैं, सब पत्नियां सर झुका देती हैं। तो भगवान कहते, जाओ द्वारका में जाके सब ढूंढ के आओ। द्वारका में दौंडी लगती है कि भगवान को सर दर्द हो रहा है, और जो कोई अपना व्यक्ति भगवान का भक्त अपने आप को समझता है वो अपनी चरणों की रस दे दें तो भगवान का दर्द तुरंत मिट जाएगा। सब लोग सुनने को आते हैं भाग भाग के, लेकिन ये सुनते ही पीछे हट जाते हैं। कहते नहीं, ये तो हमारे स्वामी हैं द्वारकानाथ, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। कि भयंकर पाप होगा, तो भगवान के पास लौट के आते नारद मुनि। तो भगवान द्वारका में कोई नहीं है तैयार आपको अपनी रज देने के लिए, तो भगवान ने कहा आप वृंदावन में गए थे क्या? बोले वृंदावन में नहीं गया था, जाओ वृंदावन में जाके लगा दो डोंडी एक बार, हो सकता है वहाँ पर कुछ हो जाए। तो नारद मुनि जी वृंदावन जाते हैं, डोंडी लगाते हैं कि द्वारका में तुम्हारे प्रिय कृष्ण को सरदर्द हो रहा है। उसका उपाय यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को उनका भक्त समझता है वो अपने चरणों की अगर रज निकाल के देगी तो उनका सरदर्द जो है तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे ही दवंडी लगती है हजारों लाखों गोपियाँ आती है भाग भाग के, और ये लो सब खिसके दे रहे हैं, और कुछ लोग कुछ नदी में जा रहे हैं, पैर डुबा रहे हैं गीले करके, फिर रेती में डुबा रहे हैं, और फिर भाग भाग के उसको निकाल रहे हैं, फिर पानी में जा रहे हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं अरे तुम पागल हो गई हो, तुम जानते हो उसका मतलब क्या होता है? ये काम करने से अनंत काल तक तुम नरक में जाओगी और नरक की यातना भोगना पड़ेगा आपको। तो वो सुनने को भी मूड में नहीं है, सब लोग अपना पानी भिगा कर रेत को लगा लगा कर पैर के रस निकाल रहे हैं, ले लो, बोलते हैं जरा सी चाहिए थी, इतनी की जरूरत क्या है, और रख लो आगे भी काम आएगी बार बार यहाँ इतना लंबा आना पड़ेगा, ले लो, तो चाहिए थी जरा सी लेकिन हो गए ढेर सारी। फिर वो सुनती हैं कि हम नरक में जाएंगी, तो कहती गोपियाँ कि अगर भगवान को जो सरदर्द हो रहा है वो पूरा नहीं, पूरा ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हम, एक क्षण के लिए भी अगर उनका सरदर्द में राहत आ सकती है तो उस एक क्षण की राहत के लिए हम सब लोग अनंत काल तक जन्म जन्मांतर तक नरकवास करने के लिए तैयार हैं। बोले वाह क्या भावना है, पूरे सरदर्द को मिटाने की बात भी नहीं कर रहे, बोले एक क्षण के लिए भी अगर राहत मिले तो भी हम तैयार हैं। तो सारा बड़ा ढेर जो है नारद मुनि उठा उठा कर द्वारका में आते हैं, हाँ भगवान को दिखाते हैं, भगवान ने ये क्या लेके आए, बोले रह जाए भक्तों की चरणों की तो इतनी क्यों लेके आए, और वो कह रहे थे कि वो ले जाओ आगे भी काम आएगी। तो निकालते हैं लगाते हैं और तुरंत भगवान का सरदर्द जो है मिट जाता है, और सरदर्द मिटते ही भगवान बड़े प्रेम से अपनी रानियों को देखते हैं, सब रानियाँ अपना सर झुका देती, बोले समझ में आया ना अभी कि मैं उनकी याद क्यों करता हूँ, हाँ आप अपनी जगह पर हैं, आप पर भी हमारा प्रेम है, आपका भी हमारा पर प्रेम है, लेकिन गोपियों की और ब्रजवासियों की बात ही कुछ और अलग है। तो ये जो लीलाएँ उन्होंने वृंदावन में की है उसका कोई जोड़ नहीं है, भगवान ने द्वारका में लीला किया, हस्तिनापुर में किया है, मथुरा में किया है, वैकुंठ में लीला करते रहते हैं, लेकिन जो वृंदावन की लीलाएँ उनकी है वो इतनी मीठी हैं, इतनी श्रृंगार और मधुर से भरी हुई है, कोई तुलना नहीं उसकी। तो इसके बारे में भगवान की रानियां जो हैं वो बचपन से सुनती आ रही हैं, जब वो बालिका थी अपने अपने राज्य में जहाँ राजकन्या के रूप में थी वहाँ पर भगवान के लीलाओं का खबर आती थी कि माखन चुरा रहे हैं, अभी गिरिराज को उठाया, अभी शक्टासुर का वध कर दिया, अभी अगासुर का वध कर दिया, अभी केशव को मार दिया, अभी धेनुकासुर को मार दिया, अभी जंगल में जा रहे हैं गौचारण कर रहे हैं, ये सब खबरें आती थी। ये केवल खबरों को सुनकर ही रुक्मिणी ने बिना देखे भगवान को अपना वर के रूप में स्वीकार कर लिया था, बिना देखे केवल श्रवण मात्र से। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने में भगवान की कथा का और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की कथा का श्रवण करने से साक्षात भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं उस कथा के रूप में। तो ये सब कथा जो है जब उनका विवाह हुआ भगवान के साथ में, तभी वो तो सब भगवान भी बड़े हो गए थे ना, युवक अवस्था में थे, वो भी युवक युवतियों की अवस्था में थे, तो बाल लीलाओं को देखने का कोई संबंध नहीं आता है। हाँ अभी मैं अगर सोचूँ, समझो मेरी पत्नी सोचती है कि मेरे पति के बाल रूप को जब देखना चाहती हूँ तो मुमकिन नहीं ना, वो टाइम हो गया उसका अभी और भगवान भी बड़े राजा बनकर बैठे हुए हैं तो बालक दर्शन कैसे होगा, नहीं हो सकता है। लेकिन एक ऐसी व्यक्ति थी जो वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारका में भी थी, वो कौन थी? रोहिणी देवी। यशोदा मैया तो पीछे रह गई, लेकिन जब कंस का वध हुआ तो वसुदेव जी ने अपनी पत्नी जो थी रोहिणी उसको बुला लिया और पति के पास रहने लगी वो, कि पति जब ही मथुरा से द्वारका गए तो द्वारका में गई। तो वो एक ही ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का साक्षात दर्शन किया था बचपन से, जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ है जब से वो बालक थे, रेंगते थे, गौचारण करते थे, गौशाला में खेलते थे, सब कुछ दर्शन किया था उन्होंने। तो ये आई सब लोग रोहिणी के पास, उन्होंने कहा कि हमको बाल लीला सुननी है भगवान की। तो रोहिणी कहती है कि मैं बता दूंगी आपको, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन की कथाओं को कहना आरंभ करूंगी, उसी समय कृष्ण बलराम वहां प्रकट होंगे और वृंदावन की याद करते ही तुरंत दारुक रथ अपने सारथी को बुलाएंगे और रथ लेकर वृंदावन चले जाएंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि जहां जहां भगवान की कथा का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वहां कृष्ण बलराम जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। वो देखेंगे कि मेरे बचपन की बातें चल रही है, तो तुरंत वो बालक अवस्था में चले जाएंगे। मतलब उनका मन जो है, जैसे अभी हमारे हम बात कर रहे हैं, और अगर मैं बालक था उस समय गांव में था और वो स्कूल में पढ़ता था, उसकी बातें करेंगे, तुरंत हम मन से छोटे हो जाएंगे, तुरंत हमारा मन गांव में पहुंच जाएगा, एकदम बालक अवस्था में हमारे मन की अवस्था होगी। आज भी अगर कोई हमारा स्कूल का कोई मित्र मिलता है तो हम एकदम बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल की याद आती है हमको। हम स्कूल क्या क्या करते, गोटी खेलते थे, हाँ, शरारतें करते थे, कभी कभी पत्थर फेंकते थे, चौक फेंकते थे पीछे से, तुरंत बालक बन जाएंगे। बड़े बड़े आदमी भी बालक अवस्था के मित्रों को मिलकर एकदम बालक बन जाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही मैं कथाओं को आरंभ करूंगी, तुरंत कृष्ण भगवान अपने बाल अवस्था के भाव में जाएंगे, तुरंत उनको ब्रज से विरह इतना होगा कि तुरंत रथ को बुलाकर ब्रज में चले जाएंगे, फिर सब तुम यहाँ पर अकेले हो जाओगे। ओ नहीं नहीं नहीं, हमको उनका संग हम छोड़ना नहीं चाहते, उनका विरह हमको सहन नहीं होगा। एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर बार ये बातें हो रही है, हर बार वो टाल रही है, हर बार बातें हो रही है, हर बार टाल रही है। एक बार इतनी उनकी उत्कंठा होती है, इतनी उत्कंठा होती है ब्रज के बारे में सुनने की, कि वो टाल नहीं सकते। बोले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले क्या करें, हमने सोच लिया उपाय, आप बैठिए कथा करने के लिए, हम सब जो है नीचे बैठ जाएंगे। उसमें देवकी जी भी बैठी हुई है, क्योंकि देवकी को भगवान के बाल रूप का दर्शन नहीं हुआ, जन्म हो गया, तुरंत उनको त्यागना पड़ा। उनको एकदम 10 साल 4 महीने की अवस्था में देखा उन्होंने, सारी बाल लीलाओं का आनंद जो है, दर्शन है, वो यशोदा मैया नंद महाराज ने ब्रजवासियों ने देखा, लेकिन माता होकर उनको उसका लाभ नहीं हुआ। तो वो भी लालायित हैं सुनने के लिए। रुक्मिणी था आदि 8 पटरानियाँ लालायित हैं, 16,100 अन्य पत्नियाँ भी लालायित हैं। बोले हमने एक उपाय सोच लिया है, मैं ऐसे बड़े महल में जाएंगे, बैठेंगे वहाँ पर, सारे दरवाजे बंद कर देंगे और एक ही दरवाज़ा खुला रखेंगे, उस दरवाजे पर हम सुभद्रा देवी को रखेंगे, जो कृष्ण की बहन है ना, कृष्ण की बुआ की बहन लड़की है, तो उसको हम बात कर ली हमने, और वो दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। और उनका काम ये रहेगा कि जैसे ही यहाँ पर कथा आरंभ होती है, दूर क्षितिज में भी दूर से कहीं मोरपंख दिखाई पड़ता है तो तुरंत वो यहाँ पर दस्तखत देगी और हम कथा बंद करके तुरंत भाग जाएंगे। तो कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। तो ये बढ़िया उपाय है, मतलब उनके आने के पहले कथा बंद हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, तो फिर वो वहाँ से जाने का, कृष्ण भगवान का ब्रज में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस तरह सब लोग सेटिंग हो गया, रोहिणी जी बैठ गई, देवकी जी बैठी हुई हैं साथ में, सब रानियाँ बैठी हुई हैं, सब आतुरता से सुन रही हैं, और वो भगवान के जन्म से कथा आरंभ होती है, ब्रज की कथा है। कैसे उन्होंने माखन चोरी किया, कैसे उन्होंने राक्षसों को मारा, कैसे वो नदी के किनारे खेलते थे, माखन चुराते थे, गौचारण करते थे, कैसे गिरिराज को उठाया उन्होंने, ऐसे बहुत मधुर मधुर लीलाएँ, राष्ट्रीय रचाए उन्होंने गोपियों के साथ में, उसका वर्णन होने लगा। तो जब भी ये कथा आरंभ हुई, जो दरवाज़ा बंद था, लेकिन जो बाहर दरवाजे पे खड़ी है सुभद्रा देवी, उनको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है सुनने के लिए, जो कान लगा के खड़ी है। और जैसे वो कान लगाती है और भगवान के बालक बाल लीलाओं के बारे में रोहिणी के मुख से कथा सुनती है, देखिए रोहिणी जो है वो वात्सल्य रस में भक्त है, भगवान की माता है भगवान की, और साक्षात दर्शन किया है उस लीलाओं में, उन्होंने भाग लिया है स्वयं। जब वो प्रेम से कह रही है तो सुभद्रा देवी को सुनकर ही भाव विभोर हो जाती है, और भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर जाती है, और इनको अंदर पता नहीं है कि सब लोग मग्न हो रहे हैं ना, सब लोग निर्धास्त हैं, क्योंकि सुभद्रा खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नॉक करेगी, तो हमको कोई चिंता नहीं, अभी हम लोग एकदम आराम से सुन सकते हैं, सब लोग मग्न हैं अंदर, और बाहर ये बेहोश होकर गिर जाती है, और दरवाजे में दस्तखत नहीं, कुछ नहीं। और निश्चित रूप में कुछ समय के बाद में कृष्ण बलराम वहाँ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कथा चल रही है ब्रज की, उनकी कथा चल रही है, प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं, अरे सुभद्रा देवी तो ऐसे विचित्र अवस्था में, दोनों हाथ शरीर में घुस गए हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, चेहरे में बड़ी मुस्कान है, और ऐसे भाव विभोर होकर वो गिरी हुई है बेहोश अवस्था में, क्या हो क्या रहा है। दोनों तरफ जाके दरवाजे पे कान लगाते हैं और खुद की लीला सुनना आरंभ करते हैं, रोहिणी के मुख से खुद की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है, इतना मधुर वर्णन हो रहा है कि भगवान के दोनों के शरीर में भी ऐसे अति आनंद के परिवर्तन होने लगते हैं, उनके हाथ लंबे हो जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर पैर लंबे हो जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी मुस्कान कान तक पहुंचती है, और कंपन हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोमांच हो रहे हैं, हाँ गदगद हो रहा है कंठ उनका, हर प्रकार के अष्टविकार जो अलग अलग तरीके से गलत तरीके से शरीर में प्रकट हो रहे हैं, और आखिर में जो आखिरी लक्षण है अति अति आनंद का विकार का, वो है डेवेस्टेशन। भगवान दोनों महाभाव में पहुँचते हैं। जब रासलीला का वर्णन होता है तो रासलीला का वर्णन होते ही भगवान जो है वो महाभाव में आ जाते हैं। सब भावों का जो राजा है, जो केवल वो महाभाव राधा रानी और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के हैं, उस महाभाव को जब भगवान प्राप्त होते हैं तो कृष्ण बलराम दोनों गिर जाते हैं। बीच में सुभद्रा देवी, मध्यस्थ सुभद्रा, एक साइड में बलदेव जी और श्री कृष्ण भगवान। एक अवस्था कैसी है, तीनों के पैर नहीं हैं, दोनों के हाथ ऐसे खड़े हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, और सुभद्रा देवी के हाथ भी शरीर में चले गए हुए हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है हमें, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन भाव भाव में ऐसे होता है। और तीनों गिर गए, अंदर बिल्कुल पता नहीं क्या चल रहा है, अंदर बहुत जोर से कथा चल रही है आनंद में एकदम, बाहर ही बाहर का सीन है। उतने में नारद मुनि वहाँ से आते हैं आकाश से, और जैसे ही इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तीनों का, तो उनके हृदय में ऐसे क्या कहते हैं उसको, स्वयं स्फूर्त प्रेम की धाराएं बहती हैं, अति प्रेम का अनुभव होता है उनको। भगवान के तो प्रेमी भक्त है ही वो, लेकिन ऐसा प्रेम उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया था, जो प्रेम की मात्रा उनको अनुभव हो रही है हृदय से अपने आप, केवल देखने मात्र से ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। तो नीचे आते हैं नारद मुनि आकाश से, और दिल भर के दर्शन करते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं, और बड़ा अद्भुत प्रेम का अनुभव करते हैं वो। तो भगवान को स्पर्श करते हैं तो पुनः भगवान अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, उनके पैर निकल जाते हैं और वो पहले जैसे हो जाते हैं। नारद मुनि भाव विभोर होकर कहते हैं कि भगवान ने आपका कैसा दर्शन था, इस दर्शन को देखने मात्र से ही मेरे हृदय में स्वयं स्फूर्त प्रेम का अनुभव हुआ मुझे, जो मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। लेकिन संत लोग बड़े दयालु होते हैं, खुद जब दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं तो केवल खुद तक रखते नहीं, वो हम जैसे बद्धजीवों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके ही उद्धार के लिए वो उनका जीवन है, तो खुद दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं लेकिन साथ साथ याद हमारी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं भगवान हमको एक वरदान चाहिए आपसे, एक वरदान की इच्छा है हमारी, और क्या वरदान है मांग लो, इसी रूप में आप कलयुग में आओगे, कलयुग नहीं सॉरी इसी युग में आप पृथ्वी पर दर्शन दोगे, अवतरित हो जाएंगे, ताकि पृथ्वी पर की जो जनता है जो आपको भूल कर आपके विस्मृति में जन्म जन्मांतर तक शरीर धारण करते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पीड़ा क्लेश की अनुभव कर रहे हैं, वो सब लोगों को आपका दर्शन मात्र से ही हृदय से स्वयं स्फूर्त प्रेम जागृत होगा तो उनका कल्याण हो जाएगा और आपके धाम में लौट के आएंगे। आपके विरह में जो यहाँ पर तड़प रहे हैं वो केवल यहाँ पर आएंगे पृथ्वी पर और आपका दर्शन करेंगे, तो दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होगा और वो आपके धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो वो जो अवस्था है वो ये अवस्था थी जिस अवस्था में विश्व क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द नेम स्कल्प्टर, मूर्तिकार का नाम क्या है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने उसी स्थिति तक मूर्ति को बना के वो छोड़ के अंतर्धान हो गए थे। नारद मुनि पूरा फ्लैशबैक कहानी जो है वो राजा इंद्रदुम्न को सुनाते हैं कि यही वो स्वरूप था जिसका मैंने दर्शन किया था और भगवान ने मुझे वरदान दिया था, भगवान अपना वरदान पूरा कर रहे हैं और इसी रूप में जो मैंने देखा था वो आज प्रकट हो रहा है। तो फिर इंद्रदुम्न राजा जो है वो दुखी थे, वो बहुत आनंदी हो जाते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो बाद में नारद मुनि कहते हैं कि उसको स्थापन करना पड़ेगा, और स्थापन करने के लिए सबसे बड़ा जो पुरोहित है वो है ब्रह्मदेव, मैं भी ब्रह्मदेव को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा कहते हैं कि मैं भी आना चाहता हूँ आपके साथ में। तो राजा के साथ में नारद मुनि राजा को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक कोई बॉम्बे नहीं है यहाँ से, हाँ ब्रह्मलोक तो बहुत सात लोकों से सबसे बड़ा लोक है, वो जो विष्णु के नाभि कमल से जो निकलते हैं ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मलोक है, सबसे ऊपर का ब्रह्मा जहाँ पर बैठे हुए हैं वो ब्रह्मलोक है। वहाँ पर बहुत ब्रह्मा जी के भक्त भी रहते साथ में, और वो जो कमल का देठ है उसके अंदर बाकी के लोक हैं, स्वर्गलोक जो और छः लोक हैं, स्वर्गलोक फिर पृथ्वीलोक हैं फिर छः नरक लोक हैं उस देठ में, हैं इन द स्टॉक ऑफ द लोटस। तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत युग बीत जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी भगवान की कुछ स्तुति गाते रहते हैं। तो मैसेज आता है कि जरा रुको, ब्रह्मदेव अभी भगवान को पूजन कर रहे हैं, कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो रुकते हैं और कुछ समय बीतता है, फिर प्रार्थना खत्म करके ब्रह्मा जी बाहर आते हैं। बोले बड़ी खुशी की बात है, मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था, मैं जानता हूँ कि नील माधव जी अंतर्दान हो गए और भगवान दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, तो मैं आऊँगा। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें छोड़कर जब तुम निकले हो, 71 युग जो है वो बीत चुके हैं, एक मन्वंतर खत्म हो गया है, एक मनु का काल खत्म हो गया है। जब तुम जाओगे दोबारा नीचे, तुम्हारे हजारों पीढ़ियाँ, लाखों पीढ़ियाँ वहाँ पर राजा बन के मृत्यु होकर उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो गई रहेंगी, तो कोई आपको पहचानेंगे नहीं। तो इस स्थिति से आप आश्चर्यचकित मत होना, जब जाएंगे तो कोई आपको पहचानेंगे नहीं, लेकिन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, हाँ, ये जान लेना कि क्या स्थिति है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, उसके पहले नारद मुनि और राजा निकल जाते हैं, बोले तो आप तैयारी करो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा था आपको ब्रह्मा जी का जो अवतरण है पृथ्वी पर, उसका वर्णन मैं करूँगा आपको। ब्रह्मा जी का बड़ा विमान है, एक शहर जैसा, उसके अंदर ब्रह्मलोक के जो सिद्ध आत्माएं हैं वो सब उसमें विराजमान हैं। कई देवता हैं, इंद्र आदि देवताएं जो है, सोम चंद्र वरुण और वायु अग्नि, सभी देवता उनके साथ में विराजमान हैं। बीच में सिंहासन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, कई देवता उनको हवा दे रहे हैं चामर से, कई ऐसे अप्सराएं हैं जो गीत गा रही हैं, वाद्य बजा रही हैं, और कई ऐसे अप्सराएं जो है वो नृत्य कर रही हैं ब्रह्मा जी के आनंद के लिए, और वेदों का उद्घोष हो रहा है, और ब्रह्मा जी बड़े ठाठ से जो है उनका शहर जो है विमान रूप वो पृथ्वी पर आता है, एक जगह पर रुकता है हवा से, और यहाँ से सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी उसमें से बड़े शान से ब्रह्मा जी उतरते हैं और पृथ्वी में आते हैं, और देखते तैयारी हो गई है। तो उस समय राजा इंद्रदुम्न जो है, इसके बीच में मैं कहानी बताना भूल गया आपको, कि जब ये दोनों चले गए ऊपर ब्रह्मा जी लाने के लिए, तभी और एक काम होता है। नारद मुनि कहते हैं कि अभी आप इन मूर्तियों के लिए बड़ा मंदिर बनाना, जहाँ पर नीलाचल पे नील माधव जी विराजमान थे वहीं पर आप भव्य मंदिर का निर्माण करना। फिर उस मंदिर का निर्माण होता है, तो इतने समय पर समय बीतता है, लेकिन वो ऐसा मंदिर दिव्य है कि वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं उसका, समय के प्रभाव से कोई वो उसका जीर्ण नहीं होता है मंदिर। तो मंदिर भी तैयार है, इतने सारे युग बीत गए हैं, मूर्ति भी तैयार है। जब इंद्रदुम्न लौट के आते हैं तो एक रथ यात्रा होती है, जो सबसे पहली रथ यात्रा मानी गई है। महावेदी में जहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से लेकर मंदिर में जहाँ स्थापना करनी है उस जगह तक, वो इस जगह की सबसे पहली रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को महावेदी से रथ में बिठाकर घोड़े से खींचकर लेके जाते हैं नीलाचल पर, जहाँ मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है ये उस समय से बना हुआ है। तो उसमें ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में फिर जगन्नाथ जी बलदेव जी का स्थापना होती है, और उसमें जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। वो जगन्नाथ जी जिस दिन प्रकट हुए थे मूर्तिकार के हाथ से, वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, उस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इसी कहानी के तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीलाचल पर, जहाँ पर अभी विराजमान है, वहाँ पर उनकी स्थापना की गई है। तो विश्ववासु जो थे, उसके जो वंशज थे, भगवान ने जब भगवान को स्थापन किया गया, तो भगवान उस मूर्ति से बोलने लगे राजा इंद्रदुम्न से। स्कंद पुराण में भगवान का जो वार्तालाप है राजा इंद्रदुम्न के साथ, वो विस्तार रूप में दिया है। उसमें भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन के हाथों से करनी चाहिए, उसे विस्तार में बताया है। और उसमें एक विशेष भगवान ने बात बताई है कि भगवान की जितनी मूर्तियाँ विश्व में हैं, वो सब जगह पर केवल ब्राह्मण के कुल के लोग ही उनकी सेवा करते हैं, अन्य कोई इनकी सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो जिनको शूद्र मानते हैं जाति से, वो शबर है और दायित हैं, उनको भगवान ने आदेश दिया है इंद्रदुम्न राजा को कि इनके तरफ से मेरी सेवा करना। और ये जो सखा हैं भगवान के, जो पुजारी यहाँ के हैं, वो सख्य भाव में हैं, तो भगवान को ऐसे भगवान के रूप में सेवा नहीं करते हैं, बड़े प्रेम से सखा के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे ग्वाल बाल वृंदावन में भगवान की सेवा करते थे, सेवा करते थे लेकिन वो भगवान के रूप में सेवा नहीं करते थे, सख्य भाव में करते थे। तो भगवान ने विस्तार रूप में विश्ववासु के वंशज जो है वो क्या सेवा करेंगे वो बताया है। रथ यात्रा में, रथ यात्रा के 15 दिन जो अनवसर होता है उसमें, फिर वापस लौटने की रथ यात्रा जो है रिटर्न रथ यात्रा, उसमें उन्होंने विश्ववासियों के वंशजों को सेवा दिया है। और जो दायित्व थे मतलब विद्यापति जो उन्होंने ढूंढ के निकाला उनको, वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को साल भर का सेवा दिया है। कुछ ब्राह्मण भी सेवा करते हैं, कुछ जो बाकी जाति के लोग हैं वो भी सेवा करते हैं। इस तरह से बहुत ही स्वयंस्फूर्त ये सेवा होती है जगन्नाथ जी की, और भगवान ने स्वयं उनको आदेश दिया है, और उसी रिवाज के अनुसार आज भी जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है जो भगवान ने स्वयं राजा इंद्रदुम्न को बताई थी। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो।